नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और तीन अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में 206 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2025 का अंतिम परिणाम घोषित और दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री संधु के सुदीर्घ कूटनीतिक अनुभव का लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। वहीं श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी की प्रगति और जनकल्याण के कार्यों में नए राज्यपाल का मार्गदर्शन दिल्लीवासियों को निरंतर आगे ले जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनने के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सक्सेना ने अपने कार्यकाल के अधिकांश समय में विविध चुनौतियों और परिस्थितियों के बीच भी संयम और संवैधानिक मर्यादा के साथ दायित्वों का निर्वहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और तीन अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करेगी और इससे यातायात में सुधार होगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 12 किलोमीटर से अधिक के मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। इस नए कॉरिडोर के जुड़ने से पिंक लाइन की लंबाई 71 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी और यह दिल्ली में देश की पहली पूरी तरह परिचालित रिंग मेट्रो होगी। इस परियोजना में यमुना नदी पर एक नए पुल का निर्माण और मेट्रो ट्रैक तथा सड़क फ्लाईओवर दोनों के लिए एक ही पिलर पर दो मंजिला डबल डेकर मार्ग का निर्माण भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो के पांचवें चरण के अंतर्गत तीन नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर, एरोसिटी से इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 तक और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक गोल्डन लाइन का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे यात्रा सुगमता बढ़ेगी और राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से विशेष तौर पर नोएडा और फरीदाबाद से आने वाले लोगों के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंच में आसानी होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने आज शहर में धूल प्रदूषण को कम करने और स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए। इसके अंतर्गत यांत्रिक सड़क सफाई को बढ़ाना, पानी के छिड़काव वाले वाहनों और एंटी स्मॉग गन की तैनाती शामिल है। वहीं धूल नियंत्रण के लिए एमसीडी ने 52 मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए हैं। साथ ही मौजूदा मशीनों के माध्यम से लगभग 3400 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई एक दिन छोड़कर की जा रही है। इसके अलावा लगभग 1300 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमसीडी ने सभी 12 जोन में अतिरिक्त संसाधन तैनात किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा सीएसई 2025 का अंतिम परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने बताया कि 659 पुरुषों और 299 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। अनुज अग्निहोत्री ने पहला, राजेश्वरी सुवे ने दूसरा और आकांश ढुल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 25 मई 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9,30,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। दिल्ली पुलिस ने फरवरी महीने में अवैध रूप से रह रहे 5 विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें भारत से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के अनुसार इन नागरिकों को बिना वीजा के देश में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने के आरोप में पकड़ा गया। इन अवैध प्रवासियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय भेजा गया है। पुलिस के अनुसार द्वारका जिले के उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से 3 नाइजीरियाई नागरिकों को देश से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। मादक पदार्थ निरोधक सेल द्वारा 2 अन्य नाइजीरियाई नागरिकों को स्वदेश वापसी के लिए भेजा गया है। सरकार ने आज बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर 1000 से अधिक टोल प्लाजा पर टोल बूथों के प्रबंधन के लिए दिन की पाली में 5000 से अधिक महिला कर्मचारियों को तैनात किया है। इस तैनाती का उद्देश्य टोल संचालन में महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशिता को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों के लिए कुशल, सहानुभूतिपूर्ण और उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव में उल्लेखनीय सुधार करना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस पहल के अंतर्गत NHAI तैनात महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ विनम्र व्यवहार, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल और टोल प्लाजा के कुशल संचालन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्षमता निर्माण का ये सुनियोजित प्रयास एक सुरक्षित और पेशेवर कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हुए सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई तथ्य या तर्क नहीं रख पाए जिससे पुराना सचिवालय परिसर में फांसीगर होना प्रमाणित हो सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल फांसीघर मामले में विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के सामने पेश हुए। श्री सचदेवा ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि 11 साल दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ये नहीं जानते कि विधानसभा नियमों के अनुसार विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई गोपनीय होती है, जिसे प्रसारित नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स के पहले दिन आज निशानेबाज भावेश शेखावत ने T3 में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। भावेश ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के पहले चरण की तीनों सीरीज में कुल 294 का स्कोर बनाया। ओलंपियन अनीश भानवाला 291 के कुल स्कोर के साथ दूसरे और राजकंवर सिंह संधू 291 के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं राष्ट्रीय चैंपियन सूरज शर्मा 290 अंक लेकर चौथे स्थान पर हैं। प्रतियोगिता में शनिवार को 10 मीटर राइफल के क्वालिफाइंग और फाइनल मुकाबले होंगे। इसी दिन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का दूसरा चरण और फाइनल भी खेला जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के आकाशवाणी स्थित रंग भवन सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से गायन और वादन की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में लोक गीतों की एक विशेष शाम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की भावनाओं और रचनात्मकता का उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार नरेश कुमार ने भी प्रस्तुति दी। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने बताया कि इस वर्ष चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को आधार कार्ड के माध्यम से जबकि विदेशी श्रद्धालुओं को ईमेल आईडी के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकास नगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
दिल्ली नगर निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज नगर निगम मुख्यालय में स्वदेशी हाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संस्था और वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल्स में बनारसी साड़ियां, कपड़े, परफ्यूम, बैग, ज्वेलरी, बेकरी उत्पाद, हस्तनिर्मित वस्तुएं और अन्य स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में स्वास्थ्य आज का भी विशेष स्टॉल लगाया गया। महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों को लोगों ने सराहा और इनकी खरीदारी भी की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में भाग लिया और पर्यावरण सहयोग पर नवीनीकृत समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2020 के समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण प्रदूषण नियंत्रण, सतत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों में संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने आगे कहा कि ये समझौता ज्ञापन ज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत करके वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सक्षम बनाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर इंडिगो एयरलाइन ने पश्चिम एशिया और इस्तांबुल से आने जाने वाली एयरलाइंस के लिए रद्द करने पर मिलने वाली पूरी छूट 31 मार्च तक बढ़ाने की घोषणा की है। इंडिगो ने बताया कि एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यदि उनकी यात्रा निर्धारित है तो वे उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें। साथ ही अतिरिक्त सहायता या स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक संपर्क केंद्र से 9112461738 पर संपर्क किया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश के निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन का उपयोग करेगी। नई दिल्ली में उन्होंने अमेरिका, इसराइल और ईरान संघर्ष के कारण व्यापार में आई बाधाओं के बारे में बताया। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने इन मुद्दों पर दैनिक आधार पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भारत वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी खरीदारों से किए गए सभी वायदों को पूरा करना जारी रखेगा।
हर दिन अंतर मंत्रालय समूह निर्यातकों से बात करता है और सरकार निर्यातकों को हर तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार सभी नीतिगत उपाय और निर्यात प्रोत्साहन मिशन से निर्यातकों का समर्थन करेगी। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के मुद्दे पर जहाजरानी मंत्रालय और सभी जहाजरानी कंपनियों के साथ भी बातचीत कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस मुद्दे का समाधान निकाल लेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि एक सेवा के रूप में शिक्षा में भारत की निर्यात आय में योगदान करने और उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय शिक्षा को दुनिया के बाकी हिस्सों में ले जाने में मदद करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। राजधानी में आज दिन में मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल सुबह मौसम साफ रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और तीन अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में 206 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। सिविल सेवा परीक्षा सीएससी 2025 का अंतिम परिणाम घोषित और दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।